उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी 20,000 वोटों से बीजेपी को धूल चटाने में कामयाब रही। ये फैसले आने के बाद जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो भी काफ़ी चिंता में है। वो एक हैरत में है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि पिछले 3 दशकों की अगर बात की जाए तो बीते 3 दशकों में उत्तर प्रदेश में चाहे बयार समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो या किसी भी पार्टी की हो, गोरखपुर पे कभी भी किसी का फर्क नहीं पड़ा। गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ या यूं कहें तो भाजपा की हमेशा से होती थी, लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया कि गोरखपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। इसकी कई बड़ी वजहें मानी जा रही हैं और इन वजहों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया हैं। हम उनसे बात करेंगे। सपा के साथ कई पार्टियां आई, बीएसपी आई और वहां के जो निषाद वोट जो माने जाते थे वह सपा के साथ हो गए, और जो वहां के निषाद जो समुदाय है उसके जो अध्यक्ष है, सपा ने उसी के बेटे को टिकट दिया और उनको चेहरा बनाया, तो सारे वोट एक साथ आ गए और समाजवादी पार्टी और बसपा भी आ गई। इस वजह से एक वजह मानी जा सकती है।
जी हाँ, देखिए ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम रख रही थी और अपने वर्चस्व को लगातार बढ़ाती हुई जा रही थी, तो जो विपक्ष था, विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं था। अगर वो एक एक करके अलग अलग करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत नहीं हो सकती थी, वो पॉसिबल ही नहीं था। मुझे लगता है कि यही कारण है कि ये सब एक साथ आ गए और इन सब लोगों ने मिल के एक साथ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। रवि, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि जब जो छोटे छोटे पक्ष हैं वहां पर, अगर गोरखपुर या फूलपुर की बात करें, जो छोटे छोटे पक्ष हैं, उन्होंने देखा कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती और अखिलेश यादव, जब ये दोनों एक साथ आ सकते हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए ये सभी लोग एक साथ आए। और इस एक साथ आने के बाद इन सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया और समाजवादी पार्टी के इस कैंडिडेट को
प्रवीण निषाद नाम है।
हाँ, प्रवीण निषाद, और एक बड़ा समुदाय भी है वहाँ पर, तो उस समुदाय के साथ बाकी समुदाय के लोग भी जुड़ चुके थे और बाकी सभी लोगों ने इन उस कैंडिडेट को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें हरा दिया और ये भी बता दिया कि अगर आप हम पर ध्यान नहीं दोगे तो आप पर हम ध्यान नहीं देंगे।
तो आपको यहाँ पर बता दें कि पीस पार्टी के अलावा जो निषाद जो वोटर्स हैं, जो गोरखपुर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णायक वोटर का एक तबका है, कहते हैं कि यह वोटर जो तबका है जिसके साथ हो जाता है जीत उसी की होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी ही कुर्सी नहीं बचा पाए, कुर्सी नहीं अपनी सीट नहीं बचा पाए, यह काफ़ी हैरत की बात है। लेकिन बहरहाल प्रवीण निषाद ने भारी वहाँ पर विजय प्राप्त की है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है, क्या लगता है आपको गोरखपुर की अगर हम सीट के अगर हम बात करें तो मंदिर के बाहर का कैंडिडेट हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ लगता है आपको?
देखिए, ये भी एक बड़ी वजह यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर गोरखपुर में अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ 5 बार जो है वो गोरखपुर से लोकसभा जीत कर गए थे, और गोरखपुर में अगर ये माना जाता है कि अगर गोरखनाथ मंदिर से कैंडिडेट को नहीं लिया गया तो उसे इतना समर्थन नहीं मिलता है। योगी आदित्यनाथ ये भी गोरखनाथ मंदिर से ही आए हुए थे, वो जब खड़े हुए तो लोगों ने उनको समर्थन दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, मंदिर के बाहर के कैंडिडेट को टिकट दे दी गई
और उपेंद्र शुक्ला को टिकट दी
उपेंद्र शुक्ला को टिकट दे दी गई और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था उपेंद्र शुक्ला के लिए। मुझे लगता है कि अगर मंदिर के ही किसी कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दी जाती तो शायद से रिजल्ट्स कुछ और होते थे, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में जो उत्तर प्रदेश माफ़ करिए गोरखपुर की जो जनता है उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है और लोग उस मंदिर से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप मंदिर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, मंदिर के कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग इससे नाराज़ ज़रूर थे और इस नाराज़गी का कारण ही भारतीय जनता पार्टी की ये हार मुझे इस वक्त लग रही है। और ये मंदिर का कार्ड बहुत बड़ा प्ले करता ही रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में।
जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को और खासतौर पर गोरखपुर की राजनीति को भलीभांति रूप से समझते हैं वह इन लाइनों को तो जरूर वे जानते होंगे। गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा, इस तरह की लाइनें वहां पर काफ़ी फेमस थी और यह लाइनें एक धमक नहीं बल्कि एक जनाधार नज़र आता है जो योगी आदित्यनाथ का दिखता था, सभी लोग उनके साथ खड़े होते थे। जो राजपूत जो समुदाय है वह क्या उपेंद्र शुक्ला के साथ नहीं खड़ा हो पाया? क्या उपेंद्र शुक्ला वहाँ पर उनको भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि यही राजपूत समुदाय योगी जी के साथ आँख मूंद कर खड़ा होता था चुनाव में?
देखिए यही एक डिफरेंस है, एक तो आप मंदिर के बाहर के कैंडिडेट को आपने खड़ा किया, उसके बाद उपेंद्र शुक्ला ये कोई इतने तेज तर्रार नेता नहीं थे, और भी कुछ लोगों की डिमांड की जा रही थी कि उन्हें सीट दी जाती है जानी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और कैंडिडेट होता और ख़ास तौर पर मंदिर से कैंडिडेट होता तो ये जो समाज है वो भी उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता, मंदिर के जितने भी समर्थक हैं वो उन्हें वोट देते। लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट चेंज हुआ, कैंडिडेट चेंज होने की वजह वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ, वोटिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से जो वोट थे वो चेंज हो गए।
भाजपा नेताओं के विवादित बयान भी इसमें कारण रहे, क्योंकि आपको बता दें कि जो कैबिनेट मंत्री हैं नाम बता दें उनका नंद गोपाल नंदी, उन्होंने फुलपुर की एक सभा में सपा बसपा के अगर हम बात की जाए तो उनके नेताओं की तुलना रामायण के बुरे पात्रों से कर दी। योगी आदित्यनाथ खुद कई सभाओं में सांप छछुंदर के अलावा चोर चोर मौसेरे भाई कहे, तो लोगों को लगा कि इससे बीजेपी के नेताओं में अहंकार हो गया है, इस वजह से जो वोटर जो फैक्टर है वो अचानक बदल गया और जो वोट है बीजेपी से मुंह मोड़ लिया उन्होंने।
देखिए रवि, जब कैंपेनिंग चल रही थी इस चुनाव के दौरान मैंने दोनों की कैंपेनिंग देखी, एक हमने अखिलेश यादव की कैंपेनिंग देखी और एक योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग देखी। योगी आदित्यनाथ ने जब कैंपेनिंग की थी मेरे ख्याल से शायद से फुलपुर में की थी, उस कैंपेनिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सांप और छुछुंदर की जोड़ी बता दी थी मायावती और अखिलेश यादव को। वहीं अखिलेश यादव ने जब यहाँ पर कैंपेनिंग की थी तो एक बहुत ही एक अच्छे नेता की तरह उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग की, एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह कैंपेनिंग की। उन्होंने जब भाषण दिया तो उन्होंने ये कहा कि हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, हम उन लोगों को ये बताएंगे कि जो हमें पिछड़ा समझते हैं हम उनको दिखाएंगे कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम हर एक काम कर सकते हैं। उन्होंने मुद्दों को उठाया, उन्होंने किसी की जोड़ी को लेकर सवाल नहीं उठाया। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे सीधे कर दिया कि सांप और छुछुंदर की जोड़ी है, ये लुटेरे हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए आप सरकार में हैं, सबसे बड़ा विश्वास करने का जो लोगों का कारण बनता है वो आप होते हो, आप पर विश्वास किया जाता है। अगर आप विपक्ष पर ये कह दें कि विपक्ष पर विश्वास नहीं किया जा सकता है तो लोग ये आपको समझ जाओगे, पहले आप अपने बारे में सोचिए क्या लोग आप पर विश्वास करते हैं। तो इस तरह की अगर बयानबाजी नहीं देते तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फ़ायदा तो ज़रूर होता, लेकिन इसका ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका पूरा इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ।
इंसेफेलाइटिस नाम की जो बीमारी थी जिस वजह से पिछले साल अगस्त में 34 बच्चे मरे, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर था? क्योंकि यह उम्मीद जताई जा रही थी प्रदेश की जनता की योगी जी कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे, क्या लगता है बच्चों की जो मौत हुई वो भी एक बड़ा फैक्टर था, लोग नाराज थे?
देखिए ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, क्योंकि योगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट देने की बात करते हैं। एक बहुत ही बड़ा कहा जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस निकाला गया है, ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस अनाउंस किया है इस गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या हुआ, आप बेसिक चीज़ें नहीं दे रहे हो। बीआरडी अस्पताल में आप देख रहे हो कि बच्चे इतने बड़े पैमाने पर बच्चे मर जाते हैं, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ आप नहीं दे रहे हो। जब आपके सिटी को, आप कॉन्स्टिट्यूंसी को आप ढंग के अस्पताल नहीं दे रहे हो, ढंग के रोड्स नहीं दे रहे हो, ढंग की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, तो लोग नाराज़ ज़रूर होंगे। एक हॉस्पिटल देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा,
डेवलपमेंट की वजह से भी लोग नाराज़ हैं,
डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा इशू रहा ही है हमेशा से, लेकिन ये जो अस्पताल का मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। देखिए हेल्थ जो सेक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो सिटी जो डेवलप होने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर अगर आप हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं देते हो और वहां पर लोगों के बारे में ध्यान नहीं देते हो तो जाहिर सी बात है लोगों में एक तरह की नाराजगी जरूर आएगी। और ये जो हादसा हुआ था ये बहुत ही बड़ा दुखदायी हादसा था और ऐसे में इसके बाद ज़रूरत थी कि आप जो फैसिलिटीज़ हैं आप आपका जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ जो आपके मेडिकल सिस्टम है उसमें बदलाव करते हुए एक अच्छा हेल्थ सिस्टम आपको आम जनता को वहाँ पर देना चाहिए था। अब आज आप भी चले जाओ बीआरडी अस्पताल में, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन कम से कम अगर देखा जाए तो 6-7 बच्चों की नवजात बच्चों की मौत हो रही है। अब क्या दे पा रहे हो? आप कुछ नहीं दे पा रहे हो। आपने बोल तो दिया लेकिन कुछ नहीं हो नहीं रहा है। सिर्फ हाँ रोड्स बन रहे हैं इस बात को मैं एग्री करूंगा, लेकिन गोरखपुर में कितने रोड्स बने हैं इस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है वहाँ से वहाँ पर अच्छे बड़े पैमाने पर रोड्स बन रहे हैं, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो लखनऊ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी सही समय सही तरीके से नहीं आती है, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, और आप कह रहे हो कि आप हर चीज़ यूपी की जनता को दोगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर योगी गवर्नमेंट थोड़ी सी लेजी होती हुई दिख रही है और यही कारण है कि इसका असर चुनाव में देखने मिला।
चलिए तो उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सड़कें बनवाई जा रही हैं। ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ को अब एक ऐसी सड़क बनाने की जो 2019 में बीजेपी सरकार को उसी सड़क के रास्ते जीत की कुर्सी तक लेकर जाए। लेकिन बहरहाल हमने ये जो आकलन किया कि आखिरकार उपचुनाव में बीजेपी को क्यों हार का सामना करना पड़ा, खासतौर पे गोरखपुर की और गोरखपुर जैसी प्रभावी सीटों पर क्यों हार का सामना करना पड़ा, हमने निष्कर्ष निकाला तो हमने पाया कि सपा और बसपा एक साथ हो गए, निषाद वोट जो बीजेपी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, इसके अलावा मंदिर के बाहर का कैंडिडेट होना विकास से अछूता गोरखपुर है, और दिमागी बुखार से बच्चों के मारे जो बच्चों की मौत हुई थी वो भी एक बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन वजहों से यूपी में और गोरखपुर और खासतौर पर फूलपुर सीटों की बात की जाए वहाँ पर बीजेपी हारी है, क्या लगता है आपको और क्यों लगता है? आप भी वजह बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। नमस्कार।